नमस्कार भारत, बुधवार 6 जनवरी, मैं हूं निखिल रंजन। भारत के रक्षा मंत्री ने पठानकोट पर सुरक्षा बलों की थपथपाई पीठ, लेकिन माना कि चूक भी हुई है।
हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, सिक्योरिटी पूरी तैयारी की थी, इट टेक्स सम टाइम टू गार्ड सच ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स। ऑपरेशन होने के बाद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे।
अफगानिस्तान में भारत के कॉन्सुलेट पर हमला करने वालों ने दीवार पर लिखा अफजल की फांसी का बदला। बंदूक पर नियंत्रण की कोशिश में जुटे राष्ट्रपति बराक ओबामा रो पड़े, कहा बंधक नहीं बनेगा अमेरिका।
The gun lobby may be holding Congress hostage right now, but they cannot hold America hostage. We do not have to accept.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अजीत जोगी को लेकर मचा हुआ है घमासान। खबरें होंगी क्रिकेट में इतिहास रचने वाले प्रणव की भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने स्वीकार किया है कि पठानकोट हमले में चूक हुई है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले पर भारत के रवैये को परिपक्व कहा है। व्हाइट हाउस में दिए गए एक बेहद भावुक भाषण में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बंदूक नियंत्रण को लेकर अपनी योजना देश के सामने रखी है। गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से घिरे राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि नए नियमों के तहत बंदूक खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की व्यापक जांच की जाएगी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और आपराधिक रिकॉर्ड भी शामिल किए जाएंगे। हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं को याद करते हुए ओबामा की आंखों से आंसू भी निकल आए। वहीं राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन का कहना है कि वह ओबामा के बंदूकों पर नियंत्रण के प्रस्ताव को चुनौती देगी। सदन के नेता रिपब्लिकन सांसद पॉल रियान का कहना है कि ओबामा की योजना को अदालतों में चुनौतियां मिलेंगी। वेनेजुएला में विपक्ष की नई सरकार ने शपथ ली है। बीते 17 सालों से सदन में सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी पिछले महीने हुए चुनावों में बुरी तरह हार गई थी। तनावपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह में सरकार समर्थक संसद सदस्यों ने अपने वामपंथी कार्यक्रमों को बचाने का संकल्प लिया। वहीं विपक्ष के सदस्यों ने जेल में बंद नेताओं पर रहम किए जाने की बात कही। सरकार समर्थक गठबंधन के सभी सदस्य अंततः अध्यक्ष पर संसदीय बहस प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए शपथ ग्रहण सत्र से बाहर चले गए। राष्ट्रीय सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष की नेता मारिया कोरिना ने कहा कि जनमत जीत गया है। उन्होंने कहा, ये नागरिकों की नई कामयाबी है। 6 दिसंबर को मतदान के दिन डर, धमकियों और ब्लैकमेल को हरा दिया गया था। आज वेनेजुएला के लोगों ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वे अपने 112 डिप्टियों के साथ हैं। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्कल ने नए साल की पूर्व संध्या कोलोन शहर में महिलाओं पर हुए यौन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें अस्वीकार्य कहा है। करीब 90 महिलाओं ने पुलिस को दी गई शिकायतों में कहा है कि उन पर यौन हमले हुए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि हमले पुरुषों के बड़े समूह ने किए हैं जो अरब या अफ्रीकी मूल के प्रतीत हो रहे थे। कोलोन की मेयर हेनरिटे रिकीर ने कहा है कि हमलों को हाल ही में आए प्रवासियों से जोड़कर न देखा जाए। अमेरिका की सबसे पुरानी मस्जिद के इमाम ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल अरबपति उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप को आने का न्योता दिया है। आयोवा के सेडार रैपिड्स स्थित इस मस्जिद के इमाम ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ट्रंप बाकी नागरिकों के साथ अपनी योजनाओं और विचारधारा पर चर्चा करें। ये न्योता ट्रंप के अपना पहला टीवी विज्ञापन जारी करने के तुरंत बाद आया है। इस विज्ञापन में ट्रंप ने मुसलमानों पर प्रतिबंध के अपने बयान का बचाव किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो की बुधवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन और आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज भी खबरों की शुरुआत पठानकोट से ही करते हैं, जो चरमपंथी हमले के बाद बीते 4 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। सरकार का कहना है कि 6 चरमपंथी अब तक मारे गए हैं। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल पठानकोट का दौरा किया और उसके बाद संवाददाता सम्मेलन में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान अभी जारी है और वो आज देर रात या कल सुबह तक और चल सकती है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है, उन्हें सबूत इकट्ठा करने दीजिए। उन्होंने कहा कि अभी जो सामान मिला है उसमें कुछ को देखकर संकेत मिलते हैं कि वो पाकिस्तान में बने होंगे, लेकिन पूरी जाँच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे, लेकिन कहीं चूक दिखाई देती है। क्या चूक हुई है? क्या इस घटना को रोका जा सकता था? इसकी पड़ताल करती पंजाब से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट सुनिए।
पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन में घुसे चरमपंथियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के चौथे दिन तक 6 चरमपंथियों को मौत के घाट उतार दिया गया, किंतु ऑपरेशन अभी तक आधिकारिक तौर पर खत्म नहीं किया गया है। अधिकारी कहते हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी कुछ दिन चलेगा और उसके बाद सैनिटेशन ऑपरेशन चलेगा। 6 चरमपंथी तो मारे गए, लेकिन उनके भारत में घुसने से लेकर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आने तक कई सवालों का जवाब अभी खोजना बाकी है। यूं तो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की ऑपरेशन सफल होने पर भरपूर तारीफ की है, पर उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं पर तो चूक रह ही गई थी।
मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया। सिक्योरिटी पूरी तैयारी की थी, इट टेक सम टाइम टू गार्ड सच ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स। ऑपरेशन होने के बाद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अभी जो सामान मिला है उसमें देर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन NIO को करने दो, किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस वायुसेना के अड्डे पर हुए हमले के पीछे की पूरी साजिश की जांच के लिए 3 मामले दर्ज कर लिए हैं और अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि राज्य में यह भी चर्चा है कि समय रहते सूचना मिलने के बाद भी पंजाब पुलिस देर से क्यों जागी, किंतु पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब पुलिस को इस मामले में क्लीन चिट दी है।
देखिए, पंजाब पुलिस ने 10 घंटे पहले उनकी इंटेलिजेंस हमारी ब्रांच ने दिल्ली को बता दिया था कि देयर इज सम इंसिडेंट गोइंग टू टेक प्लेस। उन्होंने कहा था 15 लोग कम आए, लेकिन इंटेलिजेंस वाज देयर, देयरफॉर द नेशनल एजेंसीज को मोबिलाइज करना चाहते, उनकी ड्यूटी बनती थी। अब ये जो पंजाब पुलिस इज नॉट ट्रेन फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, उनका काउंटर इंसर्जेंसी नाइदर इज NSG, इट इज द आर्मी।
पंजाब पुलिस ने 10 घंटे पहले ही अपनी इंटेलिजेंस के हवाले से दिल्ली को बता दिया था कि ऐसी कोई वारदात होने वाली है। उन्होंने बताया था कि लगभग 15 लोग घुस आए हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय एजेंसी की जिम्मेदारी बनती थी। घुसपैठ से लड़ने का प्रशिक्षण पंजाब पुलिस या NSG को नहीं, सिर्फ आर्मी को है, और आर्मी की टुकड़ी यही थी तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया। सरकार की गलती है, उन्हें शुरू में ही आर्मी को बुला लेना चाहिए था।
भारत पाकिस्तान सीमा पर पंजाब से लगता बॉर्डर, खास तौर पर गुरदासपुर से फिरोजपुर तक के बीच में से रावी दरिया कई जगह से गुजरता है, जो कई बार अपने तेज पानी के बहाव में सीमा पर लगी बाढ़ को बहा कर ले जाता है, जो स्मगलर्स और इस तरह के घुसपैठियों का रास्ता बन जाता है। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह रटौल ने BBC से बात करते हुए बताया,
पठानकोट का अभी अटैक ले लें या उससे पहले दीनानगर का जो पठानकोट के बिल्कुल पास में है, इन दोनों ही टेरर अटैक को देख कर लगता है कि पाकिस्तान में जो बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इस बॉर्डर को यूज कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एरिया जो है पठानकोट का, जो डिफेंस का देखा जाए तो पूरे भारत ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है, उसको अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और पंजाब बॉर्डर जो है वो रावी जो रिवर है बहुत बड़ा, उसको एक लाइन माना जाता है, तो उसमें बहुत सारे गैप्स भी हैं। तो LOC पे काफी ज्यादा कंट्रोल इस बार हुआ है, उसके चलते लग रहा है कि स्मगलर्स जो है वो इस गैप को यूज करते रहते हैं और उसी रूट को लगता है कि मिलिटेंट ग्रुप भी यूज करने की कोशिश।
रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर हालांकि सेना की पीठ थपथपाते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस हमले को एक दायरे में ही रखा और उसको यहीं पर खत्म कर दिया, कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी कुछ और चलते रहने की बात भी की। वे इस हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज करते रहे। उनका कहना है कि सरकार जांच के बाद भारत पाकिस्तान रिश्तों पर अपना रुख तय करेगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे रविंदर सिंह रॉबिन। देर शाम ये खबर भी आई कि गुरदासपुर के जिस SP सलविंदर सिंह को चरमपंथियों ने पकड़ लिया था और फिर उनकी गाड़ी छीन ली थी, उनसे NIA की टीम पूछताछ कर रही है। खबरें ये भी आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उधर कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर हमले पर दुख जताया और सरकार के बयान और रवैये की तारीफ की, लेकिन जिस चूक की बात को रक्षा मंत्री एक ही लाइन में कहकर आगे बढ़ गए उसका क्या मतलब निकाला जाए। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने यही पूछा वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक से।
चूक जरूर हुई है, बट इसका वजह ये नहीं कि खबर इनको नहीं मिला या फोर्सेस के तरफ से ऑपरेशनल कोई लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है तो ये एसपी साहब हमारे हैं, इनके तरफ से जो गड़बड़ किया गया है इन्होंने सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इनके साथ ड्रग माफिया का अच्छा लेन देन है, जिस ड्रग माफिया को इस्तेमाल किया गया है इस तरह के ऑपरेशन में। अगर आप किसी से गाड़ी छीनते हैं या किसी का गाड़ी लेते हैं तो उनको जिंदा नहीं रखा जाता, इन लोगों को जिंदा रख दिया गया है और वो भी एक एसपी को। तो ये अपने आप में काफी संदेह का वेग होता है पूरे मामले में, और ये इसको लेकर अच्छी तरह से इंक्वायरी होना चाहिए। खास तौर से ये जो एसपी सलविंदर सिंह जो गुरदासपुर के एसपी हैं, क्योंकि गुरदासपुर एक अच्छा खासा ड्रग का रूट है। जहाँ तक फोर्सेस का सवाल है, जिस फोर्सेस एंगेज हो, जैसे डीएसपी गार्ड, उन्होंने तो जबरदस्त लड़ाई की अपने तरफ से, जो उनको करना चाहिए था उन्होंने सब कुछ किया। इनके तरफ से कोई लैप्स नहीं है। जो टेररिस्ट थे उनको घुसने से रोकने में नाकामयाबी, ये तो जाहिर है। समझते कि मनोहर पारिकर साहब ने जो कहा है कि लैप्स है, लैप्स दूसरा लैप्स है। अब उसको इलैबोरेट जाहिर है नहीं किया, क्योंकि बगैर इंक्वायरी का एक एसपी के खिलाफ बात कैसे करेंगे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कहा है कि जो भी भारत सरकार सूचना और सुराग पाकिस्तान को देगी वो उस पर काम करेंगे और जांच में हर संभव मदद करेंगे। कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है इस भरोसे को?
नहीं, इस बात को तो गंभीरता से लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह का जो नहीं हुआ है। कारगिल के दौरान भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ। अब ये जाहिर है कि ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में नवाज शरीफ का भी काफी स्टेक है, और जो दूसरे लोग हैं उनके सरकार में विदेश मंत्रालय है, ये लोग चाहते हैं बातचीत आगे बढ़े और कुछ एक कॉन्क्रीट डायलॉग हो। हमारे यहाँ ऐसा है हिंदुस्तान में कुछ कि अभी ये बातचीत बंद कर दे, हम समझते हैं बहुत बेवकूफी होगा। पाकिस्तान के सरकार में जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं उनसे बात करना, उनके साथ एंगेजमेंट रखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ दूसरे एंगेजमेंट उनको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि ये जो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का एक हिसाब बहुत सालों से रहा है कि साहब किसी पॉलिटिकल लेवल के डायलॉग से पहले ही इस तरह की हरकत ये करके पूरा डायलॉग को जो है डिरेल कर देते हैं।
अब भारत की किस तरह से क्या नीति रहनी चाहिए?
जब तक भारत सरकार बातचीत यानी कि डायलॉग के रास्ते से नहीं हटती है वो मैच्योर कार्रवाई हम समझते हैं। पर सबसे बड़ी बात हमको ये करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हम पे दबाव डालता रहा है कि साहब आप पाकिस्तान से बातचीत करें। ओबामा साहब को ये कहना बहुत जरूरी है, या ओबामा के बाद जो साहब अपना वाशिंगटन में कुर्सी पे बैठे, कि साहब पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करें, और वो अपने तरफ से ही करेंगे। बट पाकिस्तान के फौज के ऊपर हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई लीवरेज। वो लीवरेज अमरीका के पास है, क्योंकि अमेरिका मिलिट्री हार्डवेयर इनको देता है, दूसरे तरह के इन्फ्लुएंस अमेरिका के उन पर है। तो अमेरिका को ये बताना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाए तो पाकिस्तान के फौज और आईएसआई पर दबाव आप लोग डालिए, ताकि वो अपना ये जो टेरर का जो मशीनरी है इसको डिमोबिलाइज करे।
वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक से बात कर रही थी सुशीला सिंह।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार के मैदान छोड़ने के लिए हुए कथित लेन देन के टेप को लेकर शुरू हुए विवाद पर कांग्रेस पार्टी के भीतर कलह मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे विधायक अमित जोगी अपनी ही पार्टी में भारी विरोध झेल रहे हैं। इन दोनों को पार्टी से बाहर करने की मांग भी तेज हो गई है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट सुनिए।
छत्तीसगढ़ में 13 सितंबर 2014 को बस्तर के अंतागढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम पवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। पिछले बुधवार को इसी चुनाव से संबंधित कथित बातचीत के टेप सार्वजनिक हुए हैं। इस टेप के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को जहां पार्टी ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस दी है, वहीं उनके बेटे विधायक अमित जोगी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इस बीच हर दिन छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से अजीत जोगी और अमित जोगी को कांग्रेस पार्टी से निकालने का प्रस्ताव जिला कमेटियां पारित कर रही हैं। जोगी के गृह जिले बिलासपुर में भी उन्हें पार्टी से निकालने का प्रस्ताव राज्य कांग्रेस को भेजा गया है। पार्टी के महामंत्री अटल श्रीवास्तव कहते हैं,
जो अंतागढ़ में कांग्रेस के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के हाथ बेचने की घटना हुई, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है, कांग्रेस के आम आदमी बिना किसी सबूत के मान रहे कि ये जो हरकतें हैं ये उन दोनों की ही हैं, इसलिए इनको पार्टी से आजीवन निष्कासित किया जाए, ये मांग पार्टी के सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य सभी ने रखी और उन्होंने निवेदन किया जिलाध्यक्ष से कि इस बात को हमारी प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाया जाए।
लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी इस तरह के प्रस्तावों को गलत ठहरा रहे हैं। जोगी का कहना है कि जांच से पहले इस तरह के आरोप, प्रस्ताव और नोटिस पार्टी संविधान के खिलाफ है।
मुझे बड़ा दुखद आश्चर्य होता है कि जो प्रदेश का नेतृत्व है वो ये कह रहा है कि बिना जांच के ये टेप सही है, बिना जांच के कारण बताओ नोटिस दे दिया, बिना जांच के नोटिस दे दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस ने जो कुछ किया वो हमारे कांग्रेस के संविधान के अनुसार नहीं है और मैं तो संविधान की सीमाओं से अपने को बंधा हुआ मानता हूं।
कांग्रेस पार्टी में संगठन और जोगी परिवार के खिलाफ शुरू हुई इस पूरी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी किनारे हो गई है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार को कथित रूप से पैसे देकर मैदान से हटाने का आरोप भाजपा पर ही है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं।
ये कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई का मामला है और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके वर्चस्व की लड़ाई है और पिछले दो तीन दिनों के अंदर में ये सब बातें सामने आ गई कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता ही आपस में लड़कर भारतीय जनता पार्टी के कंधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों नेता, चाहे वो भूपेश बघेल हों चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हों, ये दोनों एक दूसरे को निपटाने के मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
इस टेप कांड से उपजी विवाद के बाद आज रायपुर में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। पार्टी के विधायकों को भी बैठक में पहुंचने के लिए कहा गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर सकती है।
रिपोर्ट सुना रहे थे आलोक पुतुल। और अब आज सुबह अखबारों में क्या कुछ छपा है इस पर नजर डाल लेते हैं। दिलनवाज पाशा अखबारों के साथ स्टूडियो में हाजिर हैं। जी दिलनवाज बताइए।
जी आज के अखबारों में मुंबई के एक नन्हे क्रिकेटर छाए हुए हैं, प्रणव धनवाड़े, जिन्होंने कल 323 गेंदों में 1009 रन की नाबाद पारी खेली है। और इसी पर नवभारत टाइम्स लिखता है, यह है क्रिकेट की दुनिया के पहले हजारी लाल, यानी अब तक क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक बार 1000 रन बने और वो मुंबई के प्रणव धनवाड़े ने बनाए हैं। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की थी, इसी से जुड़ी खबरें अखबारों में हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, शरीफ ने शराफत करा गलापा, तो दैनिक जागरण का शीर्षक है, दबाव में आया पाकिस्तान। जनसत्ता कहता है, पहले घात फिर भात, माफ कीजिए, पहले घात फिर की बात। और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आदेश दिया है जिसके तहत दिल्ली में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों से भारी ट्रकों या कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद होगी। तो दिल्ली में जो सम विषम का फार्मूला चल रहा है उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी आगे आया है प्रदूषण को रोकने के लिए। वहीं अरुण जेटली, केंद्रीय वित्त मंत्री, कल मानहानि के मामले में जो है अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने कहा है केजरीवाल एंड कंपनी ने झूठ बोला है, मैंने DDCA का अध्यक्ष रहते हुए एक भी रुपया रिश्वत का नहीं लिया है। ये खबर भी आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की इस समीक्षा के लिए। और अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जिस इमारत से ये हमलावर हमला कर रहे थे उसकी दीवार पर लिखा गया था कि वे अफजल गुरु की शहादत का बदला ले रहे हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने काबुल में BBC संवाददाता सईद अनवर से बात की।
भारतीय कौंसल खाने पर हमला हुआ था परसों रात, तो हमला आधी रात खत्म हुआ। गुज़श्ता रोज जो अफगान हुकाम ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी, इस हमले में 3 हमला और शामिल थे जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मारे गए। और इस हमले के दौरान एक अफगान सिपाही पुलिस एहलकार मारा गया है और 5 पुलिस एहलकार घायल हुए हैं और साथ ही आसपास के घरों में रहने वाले 3 आम अफगान शहरी भी घायल हुए हैं। मजार शरीफ के पुलिस चीफ राजक ने कहा है कि इस हमले के दौरान अफगानिस्तान के स्पेशल फोर्सेस, पुलिस और पूरी पुलिस के स्पेशल यूनिट शामिल थे। गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान में मुकीम भारत के सफीर ने मजार शरीफ शहर का दौरा किया, कौंसलेट के स्टाफ से मिले और उस बिल्डिंग का दौरा किया जहां से हमलावर कौंसलेट पर फायरिंग कर रहे थे। गुज़श्ता रोज भारत के सफीर ने वहां मकामी सहाफियों से बात करते हुए कहा कि इस हमले के पीछे अफगानिस्तान और भारत के मुश्तरका दुश्मनों का हाथ है।
जहां ये पूरी घटना हुई है वहां से क्या सबूत कुछ मिल पाए हैं, किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, कुछ इस बारे में जानकारी निकल कर आ रही है?
अफगान सिक्योरिटी हुकाम ने जो ब्रीफिंग दी उनका तो कहना ये था कि इस हवाले से अभी तक तहकीकात जारी है और तहकीकात मुकम्मल नहीं हुआ है। इस इमारत में जहां हमला आवर छुपे हुए थे वहां दीवारों पर खून के साथ उन्होंने लिखा था कि एक शहादत और सो फिदाई, और उनका उन्होंने ये भी लिखा था कि ये हमला अफजल गुरु की इंतकाम के लिए उन्होंने ये हमला सर अंजाम दिया है। ये अल्फाज जो उन्होंने उर्दू में लिखा था अफजल गुरु खून के साथ लिखा था, वो जो तस्वीर सोशल मीडिया में आया है उसमें भी देखा जाता है और पढ़ा जाता है। लेकिन अभी तक किसी गुरोह ने रस्मी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जब से अफजल गुरु का नाम सामने आया है तो ये कहा जाता है कि ये इनका ताल्लुक किसी पाकिस्तानी शिदत पसंद गुरोह से हो सकता है।
अफगानिस्तान से बीबीसी संवाददाता सईद अनवर। अमरीका में बंदूकों पर नियंत्रण को सख्त करने के लिए बराक ओबामा ने अपनी योजना तैयार कर ली है। इस मौके पर भावुक हुए ओबामा ने कहा कि कार्रवाई ना करने का बहाना नहीं चलेगा। इस ऐलान के वक्त राष्ट्रपति के दोनों गालों पर आंसू की धार दिख रही थी। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए दिल नवाज पाशा से।
व्हाइट हाउस में दिए गए एक भावुक भाषण में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बंदूक नियंत्रण को लेकर अपनी योजना देश के सामने रखी है। गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से घिरे राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि नए नियमों के तहत बंदूक खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की व्यापक जांच की जाएगी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और आपराधिक रिकॉर्डों की जाँच भी शामिल है। हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं को याद करते हुए ओबामा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि बंदूक लॉबी ने संसद को बंधक बना लिया है, लेकिन वह अमेरिका को बंधक नहीं बना सकती है। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा,
The gun lobby may be holding Congress hostage right now, but they cannot hold America hostage. We do not have to accept this carnage as the price of peace.
हो सकता है कि बंदूक लॉबी अभी संसद को बंधक बनाए हुए हो, लेकिन वो अमेरिका को बंधक नहीं बना सकते हैं। हम आजादी की कीमत पर कत्लेआमों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद को अब भी कदम उठाने होंगे। इस कमरे में मौजूद लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक संसद इस दिशा में कदम नहीं उठाएगी। राष्ट्रपति ओबामा संसद के सालों से चले आ रहे विरोध के बाद अपने कुछ प्रस्तावों को कार्यकारी आदेशों के जरिए लागू करेंगे। ओबामा ने कहा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने अधिकारों के भीतर रहकर ही कर रहे हैं। ओबामा ने अमेरिका में गोलीबारी और बंदूक हिंसा का शिकार होने वाले लोगों को याद करते हुए कहा,
Every single year, more than 30,000 Americans have their lives cut short by guns. 30,000. Suicides, domestic violence,
हर साल लगभग 30,000 लोग बंदूकों से अपनी जान गंवा देते हैं। 30,000 आत्महत्याएं, घरेलू हिंसा, गैंग शूटआउट और दुर्घटनाएं। लाखों अमरीकियों ने अपने भाइयों और बहनों को खोया है या अपने ही बच्चों को दफन किया है। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन का कहना है कि वह ओबामा के बंदूकों पर नियंत्रण के प्रस्तावों को चुनौती देगी। बंदूकों की पैरवी करने वाले इस खेमे का कहना है कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपने भाषण में जिन घटनाओं का जिक्र किया है उन्हें नए नियमों से नहीं रोका जा सकता। वहीं सदन के नेता रिपब्लिकन सांसद पॉल रियान का कहना है कि ओबामा की योजना को अदालतों में चुनौतियां मिलेंगी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के अधिकतर उम्मीदवारों ने भी कहा है कि राष्ट्रपति चुने जाने पर वो इन आदेशों को वापस ले लेंगे। टेक्सास प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर और रिपब्लिकन नेता डैन पैट्रिक का कहना है कि यह बदलाव संविधान में दूसरे संशोधन के तहत दी गई बंदूक रखने की आजादी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा,
It's political posturing which will have no impact on reducing crime.
ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है, इससे अपराध कम नहीं होंगे और यह अदालत में मिली चुनौतियों के आगे भी नहीं टिक पाएगा। और मुझे लगता है कि अगर रिपब्लिकन राष्ट्रपति बनता है, मैं नहीं जानता कि कौन, शायद टेड क्रूज अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हों, लेकिन टेड क्रूज हों या और कोई रिपब्लिकन, जो भी राष्ट्रपति बनेगा इन आदेशों को वापस ले लेगा। मौजूदा नियमों के तहत अमरीका में सभी नागरिकों को बंदूकें रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति बराक ओबामा सालों से इसमें बदलाव करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उन्हें संसद का समर्थन प्राप्त नहीं है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। मुंबई के इंटर स्कूल कप क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रणव धनवाड़े ने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलने का करिश्मा दिखाया है। उन्होंने 323 गेंदों पर नाबाद 1009 रन बनाए हैं। एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्त।
मुंबई के किशोर क्रिकेटर प्रणव धनवाड़े ने इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में नाबाद 1009 रन बनाकर नया इतिहास बना दिया। 1000 या इससे अधिक रन बनाने वाले वे दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। केसी गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से खेलते हुए 15 वर्षीय धनवाड़े ने मुंबई क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित भंडारी कप इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में आर्य गुरुकुल के खिलाफ केवल 323 गेंदों पर 129 चौके और 59 छक्के जमाते हुए ये 1009 रन बनाए। इतना बड़ा करिश्मा करने के बाद अब प्रणव धनवाड़े की आंखों में नए सपने हैं।
मेरा पहला एम तो अभी अंडर 19 स्टेट के टीम में खेलने का, ये एम है मेरा। बाद में जैसा चांस मिलेगा अंडर 23 रणजी जैसा चांस मिलेगा वैसा।
प्रणव की इस कामयाबी से उनके पिता प्रशांत धनवाड़े भी बेहद खुश हैं।
मुंबई में खेलते आया है, मुंबई में हेमाजी क्लब में खेलता था, सब अंडर 14 के अंडर 16 के सब सिलेक्शन मैचेस खेला है, बहुत अच्छे जो अभी मुंबई के टीम में जो 16 के 19 के टीम में जो बच्चे खेल रहे उनके साथ वो खेल चुका है। अच्छा। और खेलता है, इससे अच्छा अटैक भी वो फेस कर चुका है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ओपन में खेलता है, कांगा नॉकआउट खेला है क्लब की तरफ से, तो बड़े बच्चों में भी खेला हुआ है।
अब प्रणव के कोच हरीश शर्मा की बात भी सुन ले, जिनसे गुरु मंत्र लेकर उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की।
उसमें वो कैसा है, वो जाता है अटैक तो मैं उसको एक ही चीज बोलता था, तो मैक्सिमम टाइम तुमको स्पेंड करना विकेट पे, जितना ज्यादा देर तुम रुकोगे उतना ज्यादा रन तुम बनाओगे, क्योंकि उसका जो नेचर है खेलने का, लूज बॉल मिल गया आप कभी भी नहीं देखोगे लूज बॉल को उसने डिफेंस किया है या छोड़ दिया है, वो हिट करता ही करता है और मैक्सिमम रन बनाता है।
कारनामा प्रणव ने किया तो खबर भी क्रिकेट जगत में जंगल की आग की तरह फैल गई। यहाँ तक कि भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि इतने रन बनाना मजाक नहीं है, किसी भी तरह की परिस्थिति में किसी भी तरह के मैदान में इतनी कम उम्र में इतने रन बनाना बड़ी बात है, अब सुधार करना अहम है, उनमें जरूर विशेष प्रतिभा है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने भी धनवाड़े को उनके प्रदर्शन पर बधाई दी, शाबाश धनवाड़े।
और अब उन खबरों की बात कर लेते हैं जिन पर आज पूरे दिन रहेगी हमारी नजर।
दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार की संविषम योजना के खिलाफ मंगलवार को दायर की गई ताजा जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जनवरी से 15 दिनों के लिए प्रयोग के तौर पर संविषम योजना लागू की है, जिसके तहत डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को पंजीकरण संख्या के आधार पर एक दिन छोड़कर चलने की अनुमति दी गई है। इस योजना के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत आज दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई के छापों के मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार ने सीबीआई छापों को केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई कहा था। अदानी समूह की केरल में विकसित की जा रही एक बंदरगाह के खिलाफ दायर एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। विजहिंगम बंदरगाह पर बीते साल नवंबर में ही काम शुरू हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण स्थानीय मछुआरों की ओर से अदालत में पेश होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ही आज गुजरात में अदानी पावर कंपनी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी अथॉरिटी आज गाड़ी चालकों को टोल बूथों पर खरीद के बदले टॉफियां दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।
तो ये थी वो खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और उनके बयानों की खूब चर्चा हो रही है। आज शाम दिन भर में अशोक कुमार इसी मुद्दे पर दुनिया जहान पेश करेंगे, तो सुनना मत भूलिएगा।
प्लीज वेलकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर डोनाल्ड जे।
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims. I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that.
तो जरूर सुनिएगा आज शाम दुनिया जहान। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
व्हाइट हाउस में दिए गए एक भावुक भाषण में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बंदूक नियंत्रण को लेकर अपनी योजना देश के सामने रखी है। वेनेजुएला में विपक्ष की नई सरकार ने शपथ ली है। बीते 17 सालों से सदन में सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी पिछले महीने हुए चुनावों में बुरी तरह हार गई थी। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेयर्कल ने नए साल की पूर्व संध्या कोलोन शहर में महिलाओं पर हुए यौन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें अस्वीकार्य कहा है। अमेरिका की सबसे पुरानी मस्जिद के इमाम ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल अरबपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को आने का न्योता दिया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा और आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। नमस्कार भारत में आज इतना ही, एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर मिलेंगे। नमस्कार।